रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेस के सह महामंत्री पद की मतगणना शुरू। महामंत्री में गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा हुए विजय। महामंत्री में पराजित होने के बाद रक्षा मंत्री डॉ मिनेन्द्र रिजाल ने दिया पद से इस्तीफा। जर्मन सरकार ने नेपाल को हस्तांतरण किया 41 लाख कोरोना की वैक्सीन। और भारत के गुजरात में ओमिक्रोन का 5वां केस। दिल्ली में 4 नए केस सामने आए। देश में कुल मामले 78। अब समाचार विस्तार से। नेपाली कांग्रेस के 14वें महाधिवेशन अंतर्गत आज से सह महामंत्री पद की मतगणना शुरू हुई है। कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय सानेपा में विभिन्न 3 क्लस्टर के सह महामंत्री पद की मतगणना शुरू हुई है। ये जानकारी कांग्रेस केंद्रीय निर्वाचन समिति के संयोजक गोपाल कृष्ण घिमिरे ने दी। निर्वाचन समिति मुताबिक बाकी के 5 क्लस्टरों की मतगणना कल होगी। इससे पूर्व आज सम्पन्न महामंत्री पद की मतगणना में नेपाली कांग्रेस के आगामी कार्यकाल के लिए गगन कुमार थापा और विश्व प्रकाश शर्मा निर्वाचित हुए हैं। निर्वाचन समिति से मिली जानकारी के मुताबिक गगन थापा ने 3023 मत प्राप्त की, जबकि शर्मा ने 1984 मत प्राप्त किए। महामंत्री पद पर निर्वाचित होने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए नेता शर्मा ने कहा कि पार्टी के रूपांतरण के लिए निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। दूसरे महामंत्री गगन कुमार थापा ने पार्टी को एकताबद्ध बनाने में प्रयास करने की बात कही। कांग्रेस के 14वें महाधिवेशन से प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा दूसरे कार्यकाल के लिए सभापति पद पर निर्वाचित हुए हैं। वहीं उपसभापति पद पर पूर्ण बहादुर खड़का और धनराज गुरुंग निर्वाचित हुए हैं। सह महामंत्री पद की मतगणना समाप्त होने के बाद क्रमशः केंद्रीय सदस्यों की मतगणना शुरू होने की जानकारी निर्वाचन समिति के संयोजक गोपाल कृष्ण घिमिरे ने दी। पिछले मतगणना अनुसार महिला की ओर 1504 मतों की गिनती हुई है, जिसमें महालक्ष्मी उपाध्याय को 8 से 6 मत प्राप्त हुए हैं, जबकि कमला पंत को 683 मत प्राप्त हुए हैं। दलित की ओर 1780 मतों की गणना हुई है। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री पद पर निर्वाचित होने के बाद आज ही सुंदरी जल स्थित बीपी संग्रहालय जाकर विश्व प्रकाश शर्मा ने बीपी, गणेश मान, किशुनजी लगायत के नेताओं के शालिक पर माल्यार्पण करने के साथ रुद्राक्ष के वृक्ष में जल सेचन किया। रक्षा मंत्री डॉ मिनेन्द्र रिजाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। रक्षा मंत्री रिजाल ने आज मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन कर पार्टी के महाधिवेशन में महामंत्री पद के लिए दिए गए उम्मीदवारी के दौरान पार्टी के लोगों से प्राप्त समर्थन के आधार पर अति ही संकुचित पाया गया, इसलिए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। मंत्री रिजाल ने प्रधानमंत्री कार्यालय सिंह दरबार पहुंचकर प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा को मंत्री पद से इस्तीफा देने का पत्र सौंपा। सरकार और पार्टी संचालन अलग विषय भले ही हैं, लेकिन पार्टी के भीतर का समर्थन को राजनीतिक पूंजी की संज्ञा देते हुए मंत्री रिजाल ने कहा कि मौजूदा स्थिति में हमारे पास राजनीतिक पूंजी नहीं है, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया। डॉ रिजाल को प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने आश्विन 22 गते रक्षा मंत्री पद पर नियुक्त किया था। निर्वाचन आयोग ने फागुन 12 गते होने जा रहे राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन के लिए मतदान स्थल और मतदान केंद्र तय किया है। आयोग ने आज एक विज्ञप्ति जारी करते हुए 8 मतदान स्थलों में 14 मतदान केंद्र रहने की जानकारी दी। आयोग के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या 2025 है। इसी बीच आयोग ने राष्ट्रीय सभा सदस्य चुनाव के लिए राजनीतिक दल पंजीकरण का आह्वान किया है। आयोग ने निर्वाचन प्रयोजन के लिए आज से पूछ 10 गते तक आयोग में निवेदन देकर दल पंजीकरण के लिए आह्वान किया है। जर्मनी सरकार ने नेपाल को कोरोना की वैक्सीन का 41 लाख डोज खोप की मात्रा हस्तांतरण किया है। मंत्रालय में आज आयोजित कार्यक्रम में नेपाल के लिए जर्मनी के कार्यवाहक राजदूत डॉ स्टीफन रसेक ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विरोध खतिवड़ा को वैक्सीन हस्तांतरण किया। नेपाल में कोरोना के 184 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 67 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। वहीं 2 संक्रमितों की मौत हो गई। मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वालों की दर 57.9% है। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबु राम्ररी आइपुग्नु भयो नि
हजुर राम्ररी पुगे ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड
नमस्ते बाबुजू
नमस्ते आउनु न भित्रै
हुन्छ बाबुजू
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है
उहाँ त बिहानै हो हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न म खाना तयार गर्दै गर्छु है
हस् हस् भाउजू
ओए वाइफाई होला नि पासवर्ड माग्न
त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि
ए हो र
एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार
अब बाँकी समाचार पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली के कारण कल से बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है ये जानकारी मौसम विभाग ने दी उक्त प्रणाली के कारण कल से सुदूर पश्चिम प्रदेश होते हुए पूर्व की ओर बादल जाने के दौरान सुदूर पश्चिम कर्णाली लुम्बिनी और गंडकी प्रदेश में आंशिक से सामान्य बदली रहेगी साथ ही वहां के कुछ स्थानों में बर्फबारी भी होगी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंपा भूषाल ने बेफिक्र होकर निवेश विस्तार करने का निजी क्षेत्रों से आग्रह किया ऊर्जा खपत के विषय में निजी क्षेत्रों के साथ आज मंत्रालय में हुए विचार विमर्श में मंत्री भूषाल ने निजी क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में गुणस्तरीय बिजली उपलब्ध कराने की बात कही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल ने कहा कि आम जनता की आवाज उठाने और नीति निर्माण करने वाले जगह संसद है इसलिए संसद अवरोध नहीं करना चाहिए पार्टी निकट बागमती प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता खनाल ने नेकपा एमाले देश और जनता प्रति गैर जिम्मेवार होकर निरंतर संसद में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है सरलाही में आग में झुलसने से 3 लोगों की मौत हो गई बिजली शॉर्ट होने से लगी आग में सरलाही के कविलासी नगरपालिका वार्ड नंबर 7 के सिरसिया निवासी जागी महरा की 8 वर्षीय बेटी लक्ष्मी और 3 वर्षीय बेटी सुगंधी की मौत हो गई इसी तरह सरलाही जिला मुख्यालय मलंगवा वार्ड नंबर में खुटौना में आग लगने से 70 वर्षीय नासिर खां की मौत हो गई सुनसरी और झापा में हुए 2 अलग अलग सवारी हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई और अन्य 3 लोग घायल हो गए मरने वालों में सुनसरी के भोकराहा नरसिंह गांव पालिका वार्ड नंबर 6 के 40 वर्षीय बैजनाथ रिपीदेव और को मौत हो गई ये जानकारी पुलिस ने दी इसी तरह झापा के कनकाई नगर पालिका वार्ड नंबर 7 दुर्गापुर में हुए हादसे में इलाम रोंग गांव पालिका वार्ड नंबर 6 के 33 वर्षीय संतोष राय और 40 वर्षीय चंद्र बहादुर राय की मौत हो गई ये जानकारी इलाका प्रहरी कार्यालय सुरुंगा ने दी रेडियो नेपाल और स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बीच रेडियो नेपाल के केंद्रीय प्रसारण से स्वास्थ्य बीमा संबंधी विभिन्न प्रकार के संदेश प्रसारण के लिए समझौता हुआ है आज स्वास्थ्य बीमा बोर्ड टेकू काठमांडू में रेडियो नेपाल के कार्यकारी निर्देशक बुद्धि बहादुर केसी और बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक डॉ दामोदर बसौला बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हालिया आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 22,372 गृहिणियों ने आत्महत्या की थी इसके अनुसार हर दिन 61 और हर 25 मिनट में एक आत्महत्या हुई है देश में 2020 में हुई कुल 1,53,052 महिलाओं में से गृहिणियों की संख्या 14.6% है और आत्महत्या करने वाली महिलाओं की संख्या 50% से ज्यादा है गुजरात में ओमिक्रॉन वेरिएंट का 5वां केस मिला है मेहसाणा जिले में 43 साल की महिला संक्रमित पाई गई है महिला की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है उसे बड़नगर के जीएमईआरएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है उसकी हालत में सुधार है आज ही दिल्ली में गुरुवार को ओमिक्रॉन के 4 नए मामले मिले हैं इसके साथ ही यहां ओमिक्रॉन के कुल मामले 10 हो गए हैं दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि इन 10 में से एक व्यक्ति ठीक होकर घर जा चुके हैं 9 लोगों का एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है कोई भी केस गंभीर नहीं है अब देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले 78 हो गए हैं अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहा अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर नेपाली कंग्रेसकै सहमहामन्त्री पदकी मतगणना शुरू। महामन्त्रीमै गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा हुए विजय। महामन्त्रीमै पराजित होने के बाद रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल ने दिया पद से इस्तीफा। जर्मन सरकार ने नेपालको हस्तान्तरण किया 41 लाख कोरोना की वैक्सीन। और भारत के गुजरात में ओमिक्रोन का 5वां केस। दिल्ली में 4 नए केस सामने आए और देश में कुल मामले 78। इसी के साथ हिंदी समाचार समाप्त हुए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।